नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एंड सबका दोस्त सी योगेश हमारे साथ। आज एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जो कि राजीव की डायरी में भूखा है भविष्य, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। एमडीएम या मध्यान्ह भोजन योजना को दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फील्डिंग प्रोग्राम माना जाता है। इस योजना के तहत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक बच्चे के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा 700 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम की प्रोटीन वाला मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। लेकिन इसके लिए इस सरकार की वेबसाइट और कार्यक्रम में सुनने में अच्छा लगता है, पर जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है, आज इसी को लेकर एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी, बहुत ही संवेदनशील विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए
जी सर, भूखा है भविष्य, क्या सोचते हैं सर?
हाँ देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि भूखा है भविष्य। भविष्य भूखा नहीं है, नियोजन की कमी है जी। नियोजन यदि उचित व्यवस्थित किया जाए, और हम लोग भूखे भविष्य की कल्पना क्यों करें? हम तो ये चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष आज समृद्धि की राह पर है, विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और आर्टिकल 24 के अंतर्गत हम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित भी कर रहे हैं। 1098 नंबर पे हम लोग हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से शिक्षण संस्थाओं में उनको मध्यान्ह भोजन, जो कि उसका कॉन्सेप्ट तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई है उसकी पृष्ठभूमि में ये रहा कि भाई बच्चा स्कूल क्यों छोड़ रहा है ना? तो बच्चा स्कूल छोड़ रहा है तो उसको कैसे आकर्षित करें, क्योंकि 95% बच्चे शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव में स्कूल छोड़ रहे थे। जो हमारे यहाँ पे बहुत कम पैसा बाकी विदेशों में, जैसे बाकी देशों में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में 10% से लेकर 16% खर्च होता, हमारे यहाँ उतना नहीं होता। हमारे यहाँ 3-4% शिक्षा के ऊपर खर्च होता है। ना हमारे यहाँ ठीक से व्यवस्था होती, ना हॉल होते, ना बैठने के लिए, टीचर अनुपस्थित रहते, 1.5-2 लाख टीचरों का पेमेंट है, पढ़ाती नहीं। शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक सामग्री के अभाव में बच्चा स्कूल से दूर होते जा रहा है। तो उसको यदि आकर्षित करने के लिए आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भोजन की व्यवस्था करने के बजाय यदि इन सारी सुविधाओं को दिया जाए और रोजगार मूलक व्यवस्था करी जाए, तो भूखा भविष्य वाली जो बात है मैं नहीं मानता, वो सरासर निराधार है।
जी सर। सर, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन को लेकर कई क्षेत्रों में इसको लेकर आप देखते होंगे कि कहीं इसके में कोई पारदर्शिता नहीं देखी जाती है, कुछ कमियां देखी जाती हैं, तो क्या लगता है सर कि एक बच्चे को कुपोषण से बाहर निकलने में कितनी यह योजना कारगर सिद्ध हो रही है सर?
नहीं देखिए, ये एक बड़ा अच्छा विषय है। देखिए, मैं मतलब एक्चुअली हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में जो वंचित व्यवस्था है, जो खास करके आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग है, वो अपने बच्चों को वो पोषण वाला आहार उपलब्ध नहीं करा पाता, इसलिए हमको सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो चलिए, आंगनवाड़ी के माध्यम के साथ साथ अभी हम लोग स्कूल के माध्यम से, लेकिन मैंने कहा ना शुरुआत में, कमियां किसी चीज में नहीं, कानून है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसके क्रियान्वयन करने वाले जो लोग हैं वो अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करें। जैसे चुनाव के समय आप देखिए कितने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किए, बड़ी ईमानदारी से करते, तो वही व्यवस्था हम लोग सब व्यवस्थाओं में लागू करें। आप देखिए, कई टीचर इतने अच्छे हैं कि वो स्वयं भी बच्चों के साथ बिठा के भोजन करते हैं और इतना अच्छा भोजन खिलाते हैं। अभी मैं यहाँ हमारे, मैं पिपला का रहने वाला हूँ, तो वहाँ एक हॉस्टल अधीक्षक है दुर्वे जी, वो बच्चों के, उनका हॉस्टल मैंने वाच किया, वहाँ साफ सफाई, बच्चों को भोजन, बच्चों के साथ जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। तो जो दुर्वे जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि अभी वो रिटायरमेंट होने वाले हैं अप्रैल में, तो उन्होंने जो व्यवस्था की है और वहाँ जो सौंदर्यीकरण किया है बहुत अच्छा है। तो ऐसा सब लोग ईमानदारी से अपने काम को क्यों नहीं कर सकते? व्यवस्था बहुत अच्छी है, भूखा भविष्य है नहीं। हम व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन सही करें, अपनी जिम्मेदारी समझ लें, हर व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी नैतिक, आप जिस तरीके से अपनी ईमानदारी पेमेंट लेने को लेकर राह देखते रहते एक तारीख की, तो अपने काम को लेकर भी जो 8 घंटे का विभाजन है काम का, उसको क्यों नहीं कर सकते आप? काम करना चाहिए, अपने लक्ष्य को लेकर। बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा? यदि आज हम बच्चों का भविष्य नहीं संवारेंगे तो फिर 1857 की क्रांति एक बार होगी, ये मैं आपको अभी से सुनिश्चित कर देना चाहते हैं।
जी सर, आपके क्षेत्र में क्या देखते हैं मध्याह्न भोजन को लेकर, और क्या बच्चे क्या मध्याह्न भोजन के माध्यम से स्वस्थ रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं?
नहीं देखिए, इसमें थोड़ा क्रियान्वयन का महत्व है बार बार। अभी मैं देखिए एक दिन बस में बैठ के आ रहा था तो बच्चों को पूछा, बच्चों आप कहाँ पढ़ते हो? तो बोले सर हम, मैं नाम नहीं लूंगा वहाँ का, मतलब बोले सर हम यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने पूछा कैसे क्या है, तो मैंने कहा भोजन खाना वाला। तो सर जी आप कौन है? बोले कोई अधिकारी है क्या? मैंने कहा नहीं, बताओ। नहीं नहीं बताते नहीं। बोले मैंने कहा बताओ भाई, नहीं हूँ कोई मैं अधिकारी नहीं। बोले सर हमको सर जली वाली रोटी मिलती है सर, बोले, और दाल में हम दाल ढूंढते हैं, बोले सब्जी तो कैसी रहे पता नहीं। जब अमाउंट आ रहा है तो उसको अच्छा खाना खिलाने में क्या दिक्कत है? वो बच्चे मेरे डरे से हमें मेरे को बता रहे थे। तो मैंने उनसे कहा तो आप शिकायत क्यों नहीं करते? बोला कलेक्टर साहब से जब आपके अधिकारी तो नहीं सर, बोले हमको मारते है, बोले मतलब आप सोचो कि उसको जली कुट्टी टाइप की रोटी, हर जगह नहीं होता ऐसा, कई टीचर इतने अच्छे, कई जगह इतनी अच्छी व्यवस्था है कि भोजन जो है बहुत अच्छा बनता है। अभी देखिए मंत्री महोदय कई बार मध्यान्ह भोजन के लिए जब जाते हैं बैठते हैं तो कितना अच्छा भोजन बनाते हैं, तो बच्चों को क्यों नहीं? हम कितना गलत कर रहे, कितना अन्याय कर रहे हैं, हम बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे यार। हाँ अपना काम तो कम से कम करना चाहिए, और आपको कौन से अपने जेब से पैसे लगाना है? वहां तो सारा खर्चा सरकार दे रही है, बढ़िया कम खिलाओ लेकिन अच्छा खिलाओ। वो बच्चा बोल रहा था दाल ढूंढते हैं सर, बोले रोटी जली कुटी रहती, बोले वो बता ही नहीं रहा था, बोले मेरी आप कोई अधिकारी तो नहीं, बोले मारते सर, बोले हम लोग यदि शिकायत करेंगे। अरे मैंने कहा अपनी बात तो बोलना चाहिए। तो ये वाला जो डर है, ये डर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी काम मतलब बिल्कुल ढर्रे में चलता है ऐसा लगता है। मतलब सरकारी बोला मतलब वहां की व्यवस्थाओं को देखो तो ऐसा लगता है पेमेंट अच्छा है, योजनाएं बहुत अच्छी है, बस ध्यान देने की जरूरत है, कहीं नहीं हो सकता। कई ऐसे टीचर के अधीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक या स्कूलों के प्रधानाचार्य देखें, बच्चों को बड़े ईमानदारी से भोजन करवाते, बहुत अच्छा भोजन करते, खुद भी उसमें बैठ के भोजन करते, बस ये चीज है सर।
सर मेरा अगला सवाल है कि क्या मोबाइल वाणी पर जो ये राजीव की डायरी में भूखा है भविष्य, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का विषय है जो मोबाइल वाणी चला रही है, और साथ ही क्या ऐसे आपने अभी हाल ही में कहा कि अगर कुछ अगर कोई बच्चे शिकायत करते हैं तो क्या ऐसे भी कोई शिकायत होनी चाहिए जो गोपनीय तरीके से शिकायत करके बच्चों के नाम आए बिना इस पर कार्रवाई हो सके?
हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, और ये जो डायरी चला रहे हैं आप बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जनचेतना जागृत होगी। लेकिन जनचेतना मोबाइल वाणी के माध्यम से जन जन तक जा रही है, लेकिन हमको प्रैक्टिकली जमीन स्तर पर भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक शिकायत पेटी हम लोग स्कूल में रखा है, उसका हर 8 दिन में मॉनिटरिंग हो, क्योंकि बच्चा खुल के सामने नहीं आता। जैसे वो बच्चे ने मेरे को उदाहरण दिया था सर, बोले हम अम्मी नहीं बताएंगे क्योंकि हमको मारेंगे सर, बोले शिकायत करेंगे। तो इससे सुरक्षित होने के लिए एक शिकायत पेटी रखे, चुपचाप तरीके से वो बच्चे की शिकायत को स्वीकार कर ले, उसका नाम न छुपे। सबसे बड़ी बात है सर मॉनिटरिंग की है। आप कई ऐसे स्कूल में जाइए, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख सरकारी टीचर बैठे हैं, पढ़ाते नहीं साहब, अब बताओ। अब इसके लिए मॉनिटरिंग भी कहाँ तक करेंगे, कितना जिम्मेदार है? उनके खुद के संस्कार नहीं, पढ़ाती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते, और जो पढ़ाते हैं उनकी खिंचाई करते हैं, उनको प्राचार्य ऐसे ऐसे कोई प्राचार्य देखे उनको चापलूस लोग ज्यादा पसंद है, और जो व्यक्ति अपने ईमानदारी से काम करता है उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, ऐसी व्यवस्था मैंने देखा सर। अब बताओ टीचर होके ऐसा काम कर रहे हैं तो कैसा होगा साहब? और बच्चों का भोजन भी उसमें में गड़बड़ करते हो, मेरे को बड़ा ताज्जुब लगता है यार, इतना पेमेंट मिलता आपको, इतना सरकार व्यवस्था आपके लिए कर रही है, फिर भी आपका नजर वो बच्चों के खाने में, वहां से भी कमाने को देखते, कैसे लोग है यार, भारत की नैतिकता कहाँ चली गई? मेरे को ये नहीं समझ, मेरे को तो कभी कभी हंसी भी आती है कि बनना है हमको गवर्नमेंट अफसर, बनना है हमको गवर्नमेंट अधिकारी। अभी एक मैं बड़े अधिकारी से मिला था पिछले दिनों, तो वो कह रहे थे बोले आपको पैसे से प्यार नहीं है। मैंने कहा सर पैसे से प्यार है लेकिन ईमानदारी से कमाना चाहिए सर। बोला बेवानी का पैसा स्थायी संपत्ति नहीं होती, ईमानदारी से कमाओ तो आपको भी गर्व महसूस होता है। और वो IAS अफसर है सर, उन्होंने मेरे ये सवाल किया था IAS अफसर ने कि क्या पैसे से आपको प्यार नहीं? मैंने कहा पैसे से प्यार है सर लेकिन ईमानदारी से हम लोग मेहनत से बेमानी से नहीं कमाते साहब। बोला भले ही हमारे पास 1 रुपया रहे लेकिन उसका नियोजन कैसे करना ये हमको आता है। तो IAS अधिकारी शांत हो गए थे। तो हर अधिकारी को सर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, और आपका आपको पेमेंट काई के लिए मिल रही है? आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है, उसी के लिए पेमेंट मिल रही है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर, मेंटली रिलैक्स होकर बढ़िया काम करना चाहिए। प्राइवेट संस्थाओं के देखो बच्चे, वो मेरे एक मित्र है चंद्रशेखर अंबटकर जी, वहाँ का 3 महीने में लड़का इंग्लिश पढ़ता है और यहाँ पूरे 17 साल लगा देता है लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती थी। ये विडम्बना देखिए, अभी एक स्कूल में देखा विवाद उठा था, प्राचार्य को अपशब्दों के माध्यम से सम्मानित किया गया कि मेरा बच्चा यहाँ पहली से लेकर आठवीं तक पढ़ रहा है, अभी तक उसको ढंग से पढ़ नहीं आता। तो ये लगता है कि ऐसा क्यों, जबकि वो अंबटकर सर 3 माह में टनाटन इंग्लिश बोलता है वहाँ का बच्चा, और यहाँ 17 साल बच्चा पढ़ने के बाद में इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है, तो रीजन क्या है? तो ठीक है, परिवेश, वातावरण, वो सब चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी तो भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ना साहब, मेहनत तो करना चाहिए अपने काम के प्रति। जी,
तो ये थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर चल रही राजीव की डायरी में भूखा है भविष्य विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। सर मोबाइल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी, धन्यवाद सर
जी। मोबाइल सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।